From the conference center.
Salt Lake Sahar ke Temple Square ke sammelan kendra se Yeshu Masih ka girjaghar ka antim dino ke santo ka parihat ki sabha ka 183rd arthvarshik mahasammelan hai. Ye sabha ka sangeet Utah स्थान मरी के स्टेक से ऐरोनिक प्रस्तुत के जवान पुरुषों को सम्मिलित क्वायर द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रधान हेनरी बी आर इंगर जगर के प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार इस प्रोहिति की सभा का आज रात संचालन करेंगे।
Brethren,
भाइयों, हम तुम्हारा 183rd ईसु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का अर्थवार्षिक की महापुरोहिति सम्मेलन में स्वागत करते हैं। प्रेसिडेंट थॉमस एस मानसन, जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने मुझे कहा कि मैं इस सभा को संचालन करूं। यह सेवा सैटेलाइट ट्रांसमिशन और इंटरनेट पुरोहिति के रखने वाले को दुनिया भर में मिल रहा है। इस सभा का संगीत रोनिक पुरोहिति की गायक मंडली जो जवान पुरुष के साथ मरे यूटा के स्टेक से है करेंगे, जिसका निर्देशन केली डिहान और रिचर्ड एलियट के साथ ऑर्गन पर करेंगे। गायक मंडली इस सभा की शुरुआत की इस गाने से करेंगे, सिंग प्रेज टू हिम। फिर प्रार्थना पॉल ई कॉलिकर, जो 70 के पहले परिषद के सदस्य थे, आज शाम अपने सेवा के मुक्त हुए है के द्वारा प्रार्थना की जाएगी।
Oh,
Our eternal Father in heaven.
Hey, Mareșor, Pita.
We have gathered together in this general priesthood.
हम यहाँ पर general priesthood meeting में इकट्ठा हुए हैं. आज हम धन्यवाद देते हैं जो हमें निमंत्रण मिला जो face presence here quorum of 12 के साथ है और उनसे सीखें और शिक्षा पाएं कि कैसे आपके गिरजाघर चलाएं. हम धन्यवाद देते हैं आपके और धन्यवाद देते हैं priesthood के और quorums के और उन चाबियों के आशीष के लिए. धन्यवाद देते हैं शक्ति और धन्यवाद देते हैं हमारे प्रॉफिट प्रेजेंट थॉमस एस मॉन्सन के लिए और उसके अगुवाई के लिए जो हम लोग के लिए करता है और दिखलाता है. और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम आपके पुत्र यीशु मसीह को पालन करते हैं, हम आपके प्रॉफिट के भी फॉलो करें. हम प्रार्थना करते हैं मिशनरीज के लिए और हमें आज्ञाकारी बनाए ताकि हम आपके सुसमाचार पे चलें. हम धन्यवाद देते ऑर्डिनेंसेस के लिए जो आपने दिखलाया हम लोगों के. हम प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे और आशीष दे ताकि हम आगे बढ़ सकें. हम के पवित्र आत्मा को अपने महसूस करें और खास करके ताकि हमारे हृदय को खोले ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें और हम एक साथ हो जाएं. ये सब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
The choir will now.
अब गायक मंडली हमारे लिए गाएगी like 10,000 legions marching. संगीत के बाद हम आभारी होंगे एल्डर एल टॉम पेरी जो बारह देवदूतों को प्रसाद को है को सुनने को सुनने में. उसके बाद बिशप जेरल्ड कोसे जो बिशप रिक की अध्यक्षता है से सुनेंगे. एल्डर रैंडी डिफांग जो 70 के है फिर हमसे भाषण देंगे.
Oh, When I was given this assignment,
जब मुझे महासम्मेलन के पुरोहित सभा में बातें करने का अवसर प्रदान हुआ, मैंने तुरंत एक प्राइमरी शिक्षा के बारे में सोचा। उसके महान इच्छा थी कि हम पुरोहित पाने के लायक बने। उसने हमें प्राइमरी से ग्रेजुएट होने के जरूरत को सिखलाया। 12 अपोजल के परिषद के सदस्यों के नामों और विश्वास के विषय को याद करने को उसने हमें वादा किया कि हम सबको 13 आर्टिकल्स ऑफ फेथ को याद करने को है, ताकि फिर हम चुन सके कक्षा के साथ बाहर जाने के। हमने एक काश स्थान लोगन कैनियन के प्रवेश द्वार के प्रथम धेम पर परित्रा चुकना पर सर करके जाने को चुना, जो हमने प्रसन्न था। पथरीली चट्टान पर एक सीधा स्थान था जहां एक चूल्हा था जहां हम हॉट डॉग्स और मार्शमेलो को बनाना चाहते थे। जब हमने स्थान को चुना, हमें अपने शिक्षा के बारे में नहीं सोचा था, जो भूरी और शारीरिक तौर से अच्छी नहीं थी। अगर हमने और सावधानी के साथ उस पर सोचा था, हमने पता चलता कि उसे तकलीफ होगा कि स्थान पर छड़के में। उसने किसी भी तरह अपने वादे को पूरा किया और हिम्मत से हमारे पीछे चलती रही। पहला हमने छोटे से पर्वत पर चढ़ा। उस समय वहाँ पर उस स्थान पर कोई बिजली का तार नहीं था। हमें चट्टान से रुकने के लिए कुछ मदद के साथ हमारे शिक्षा वहाँ तक पहुँच गई। पहाड़ के चोटी पर पहुँच के बाद हम नीचे पथरीली स्थान में उतर रखे टेटलबैक कहते थे। हमारे पहुँचे के बाद हमारे शिक्षा के समय लगा वापस अच्छी तरह से सांस लेने में। जब हम भोजन की तैयारी करके खाने के लिए फेर रहे, वो ठीक हो चुकी थी और वापस हमारे अंतिम पाठ को सिखलाने के उसने बताया कि वो कितनी खुशी थी हम पिछले 2 सालों के प्राथमिक में सिखला रही थी। उसने हमें विश्वास के विषय से अच्छी तरह याद करने के लिए ध्यान में बात दिया। वो उसमें से किसी भी एक नंबर को बोलती और हम उसके जवाब दे रहे थे। फिर उसने बताया कि विश्वास के विषय को याद करने सिर्फ शब्दों को जानने के बराबर है, जब तक कि हम उसके अंदर की धर्मशास्त्रों सिद्धार्थों को जान नहीं सके। उसने हमें आर्टिकल्स ऑफ फेथ के हर एक सुसमाचार के धर्मशास्त्रों के सिखाया को सिखलाया। उसने बताया कि विश्वास की विषय में पाए गए धर्मशास्त्र है। हमें पहले आर्टिकल्स ऑफ फेथ से सीखते हैं कि ईश्वर 3 अलग है, परमेश्वर जो पिता है, यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा। दूसरा विषय ये सिखलाता है कि हम धरती पर अपने कार्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तीसरा उद्धारकर्ता के मिशन को बदलाता है स्वर्ग के पिता के बच्चों के मुक्ति के लिए। चौथा सिद्धांत है धर्म विधि और जरूरी मूल के सिखलाता है। हमारा शिक्षा के वाणी के शक्ति मेरे लिए प्रेरणा की सांस था और कशियत के कारण से उसने सुसमाचार को सिखा के दिया था। धर्मशास्त्र ने हमें मार्गदर्शन दिया और सच्ची और स्तार था पहुंचाने में, जिससे हम पाए जाने वाले ज्ञान को जान पाए क्या वो सच है या गलत। सच्चा धर्म विधि परमेश्वर से प्राप्त होता है। सभी सच्चाई का मूल और नेव सच्चाई धर्म विधि से शिक्षा और तरीकी हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के समाचार में है। झूठे शिक्षा शैतान से मिलती है। सारे झूठे बातें का जमादाता है। उसकी इच्छा है कि खराब करे, बदले और सभी सच्चाइयों को बदले। वो हमें धोखा देना चाहता है ताकि कोई अपने स्वर्ग के घर का मार्ग को भूल जाए। धर्मशास्त्र सिखलाते हैं कि किसी तरह से झूठी शिक्षा से बच सकते हैं। उदाहरण पर पॉल की पत्र तिमोथी में हम पढ़ते हैं, संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझे और साधारण और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है। ताकि परमेश्वर का जान सिद्ध बने और हर एक बाले काम के लिए दांत पर हो जाए। सिद्धांत उसी तरह से गिरजाघर को जरूरी है जैसे बदरी फोन के लिए। जब हम अपने फोन से बैटरी निकाल देते हैं वो बेकार को हो जाता है। एक गिरजाघर जिसमें अच्छा सिद्धांत हो नहीं सिखलाया जाए उसी तरह बेकार है। ये हमारे स्वर्ग के पिता और हमारे आनंद घर तक मार्गदर्शन नहीं दे सकता। जब हम मसीह के सिद्धांत के मूल को समझने लगते हैं, पहुंचने और चाहते हैं विश्वास के विषय हमें पुरोहित की संगठन और दर्जा को संगठन देता है। प्रभु के निर्देशन में जोसेफ स्मिथ ने पुरोहित अधिकार का इस्तेमाल करके उद्धारकर्ता के गिरजाघर को संगठन किया है। परमेश्वर की शक्ति यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों का संतों वही संगठन है। मसीह ने संगत और मार्गदर्शन दिया था जब वो यहाँ धरती पर था। कितना महान दिन था जोसेफ स्मिथ और ओलिवर कार्डरी के लिए मई 1829 में जब वे जंगल में गए और बपतिस्मा पापों के क्षमा के धर्मशास्त्रों के बारे में प्रार्थना किया के लिए जो उन्होंने पढ़ा था मोरमन के धर्मशास्त्र को अनुवाद करते हुए। यहाँ पर कई शिक्षा और हाल के 1800 में दूसरे गिरजाघरों से हुए बपतिस्मा पर जोसेफ और ओलिवा जानते थे कि वे सब सच्चे नहीं हो सकते। वे बपतिस्मा के सही तरीके को जानना चाहते थे और किसी पास अधिकार था बपतिस्मा के लिए। प्रभु से सवाल के जवाब में स्वर्ग से दूत जॉन द बैप्टिस्ट उनके पास आया। एक ही बात ही एक उसने उनके ऊपर अपने हाथों पर रखकर और अधिकार दिया बपतिस्मा के लिए। कहता हुआ, तुम्हारे ऊपर मैं चेले सेवकों मसीह के नाम से मैं एरन की पुरोहित को देता हूँ। कितना महान दिन था दुनिया की इतिहास में पुरोहिति को धरती पर दोबारा पुनस्थापित किया गया था। जब हमें पुरोहिति को प्राप्त करते हैं हमें परमेश्वर के नाम में कार्य को करने का अधिकार प्राप्त हुआ था और सच्चाई के रास्ते और सच्चाई से आगे बदलना का यह अधिकार सच्चाई की शक्ति का मुख्य मूल है और धरती पर परमेश्वर के बच्चों के लाभ के प्रभाव के लिए हम और हमारे साथ मौत के बाद भी रहेगा। ये जरूरी था कि पुरोहित सच्चे यीशु मसीह के गिरजाघर संगठित होने से पहले पुनस्थापित हो। यह मुख्य पाठ है जो हम विश्वास के विषय के पहुंचे और चाहते मैं सीखते हैं। अगले तीन विश्वास के विषय 7, 8 और 9 इन सातों के बतलाए हैं जो हमारे मनसली सफर के लिए है और धार्मिक ऊपर मिलते हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए जब हम प्रभु के शिक्षों पर चलते हैं और हमें बुराई के बतलते हैं। धर्मशास्त्र दूसरी मार्ग है। अगर हम परमेश्वर के शब्दों के अनुसार चलेंगे हम आनंद जीवन के मार्ग पाएंगे। नवा विश्वास के आर्टिकल्स ऑफ फेथ सिखलाता है कि परमेश्वर ने बतलाएंगे और आगे भी बतलाएंगे कि कई महान और जरूरी सच्चाई को अपने भविष्यवक्ताओं को देवताओं को प्रकट करेंगे वालों से। हम सीखते हैं कि आत्मा की स्थिर छोटी सी आवाज को सुनने की साथ और धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं एक दूसरे मार्गदर्शन को स्थान हमारे गिरजाघर नेताओं हैं जो चुने हुए और नियुक्ति प्राप्त और हमारे जीवन को आशीर्वाद देने के लिए अधिकार प्राप्त हैं और शिक्षा द्वारा जो वे सिखलाते हैं। 10वां और 11वां और 12वां विश्वास ये विषय हमें बतलाता है कि तरह प्रचारक कार्य को किया जाता है और सुसमाचार को दुनिया में बनता जाता है जहां हम दूसरे और कई तरह से नियम के हम इज़राइल का इकट्ठा होने के बारे में सीखते हैं। उद्घाटक के दूसरे बार आने के तरह में हम ये बतलाता गया है कि आदमी और महिलाएं खुद चुनने वाले हैं और वे चाहे किए तो परमेश्वर के शब्दों को स्वर्ग ये नहीं उनके। अंत में हम सीखते हैं कि जब हम दुनिया के चारे दिशों में यीशु मसीह के सुसमाचार के पुनस्थापितों है और हमें सभी राजनीति को इज्जत करना होगा और एक और हम जानते हैं 13वां विश्वास की विश्वास का जानकारी देता है कि तरह से हम जीवन को संचालन करना और दूसरों के साथ पेशा आना चाहिए। यह बतलाता है कि हम विश्वास करते हैं कि सच्चे होने में विश्वासकारी सती पवित्रता दूसरे के लिए अच्छा कार्य करना। जैसे हम ऐलान कर सकते हैं कि हम पॉल के उपदेश को पालन करते हैं, हम सभी चीज़ों में विश्वास करते हैं, हम बहुत कुछ पार कर चुके हैं और हम आशा है कि सभी कुछ पार कर सके। अगर यहाँ कोई ऐसी प्यारी अच्छी जानकारी देने वाली या प्रशंसा लायक हो, हम इन चीज़ों को ढूंढते हैं। हम सबको इन गुणों की आकांक्षा करनी चाहिए और हम तरह से जीना चाहिए कि हम उसके अच्छाई उदाहरण है। विश्वास के विषय के सच्चाई सीखते हैं कि इस दूसरे पर निर्भर है। जैसे फोन के अंदर के अलग अलग भाग साथ काम करते हैं, उसी तरह जैसे हम फोन के सभी भागों को साथ मिलाकर बातें बनाते हैं। विश्वास के विषय हमें पुनर्स्थापित के मुख्य धर्मशास्त्र तो देता है। हर एक आर्टिकल ऑफ फेथ हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को समझने में महान मूल्य देता है। मेरे प्राइमरी शिक्षक ने मुझे परमेश्वर के राज्य के धर्मशास्त्र में स्थिर विश्वास को बनाने में मदद किया। उसने मुझे स्थारण विश्वास की कि आर्टिकल्स ऑफ फेथ का गहरा मतलब को जानना सिखलाया है। उसने मुझे वादा किया कि अगर मैंने इन पवित्र आज्ञाओं को सीखने में समय लगाया, जो ज्ञान मुझे हासिल है कि मेरे जीवन में कोई मैं गवाही देता हूं कि ये आशा हुआ है। लोगन कैनियन पसद पर मेरे शिक्षक के आश्चर्य शिक्षा के बाद हमें देखा था कि वो वहाँ तय किया समय की ज्यादा देर तक। दिन खत्म हो रहा था और हमें जानना है कि मुसीबतों में मेरे शिक्षा ने हमारे खास स्थान पर जाने के लिए मुसीबतों को उधर था, मगर घर लौटने समय दूसरी मुसीबत था। इससे पता चला कि ये स्थान हमारे गतिविधि के लिए अच्छी नहीं थी। वापस आना हमारे लिए मुश्किल था, मगर उसके उम्र से व्यक्ति के लिए ज्यादा मुश्किल था। जब हम उसे मुसीबतों में मदद करके पहाड़ से वापस ला रहे थे, दो पुलिस के आदमी आए प्राथमिक प्रशान और उन्होंने हमें ढूंढने के लिए भेजा था, क्योंकि उसने सोचा कि हम खो चुके हैं। ये मेरे जवान को नाबालिग वालों अनुभव था कि दिन ये है। तुम जवान पुरुष, मैं तुम्हें प्रोहित करता हूँ कि अपने ज्ञान से आर्टिकल्स ऑफ फेथ और उसके जो धर्मशास्त्रों के सीखते के पढ़ो और सीखो। वे गिरजाघर के धर्मशास्त्रों के खास वाक्य है जो सबसे जरूरी और खास है। अगर तुम यीशु मसीह के सुसमाचार के इस्तेमाल करोगे अपने पढ़ाई में मार्ग देने के लिए, तुम अपने आप को तैयार देखोगे दुनिया के पुनस्थापित सच्चाई के अगुवाई देने में। तुम संधारण सिद्ध और महान तरीके के बदन साके यीशु मसीह के गिरजाघर के अंतिम दिनों के संतों के एक सदस्य होने के मुख्य विश्वास जीने जिससे तुम मूल्य देते हो। मैं अपने गवाही को तैयार विश्वास के आर्टिकल्स ऑफ फेथ के सच्चाई के साथ जोड़ता हूँ, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
Most of us at one time.
एक समय दूसरी बार उस स्थिति और गुजरे थे जो हमारे लिए नया आता आज हमारे विदेशी नहीं महसूस किया गया. President Munson ने गिरजाघर के महाधिष्ठता में सेवा करने के नियुक्ति दो को देने के बाद इस नियुक्ति ने मेरे परिवार को मजबूर किया सुंदर स्थान को छोड़ने के लिए जान. मेरे पति और मुझे भी याद आई वह अचानक का जवाब हमारे बच्चों का जब उन्होंने इस बदलाव को सुना था. हमारे 16 साल के पुत्र चलाया ये मेरी मुसीबत नहीं है तुम जा सकते हो मैं यहीं रहेगा. वह फिर तुरंत ही तैयार हो गया हमारे साथ जाने के लिए और विश्वास होकर अपने जीवन में नया अवसर को. पिछले 5 सालों से मैं स्थानों में रहने से हमारे परिवारों को सीखने और खुशियों को अनुभव करने का मौका मिला. जबकर हमें कई देशों में रहा है हमें यह स्वीकार किया है कि दुनिया भर के परमेश्वर को लोगों के एकता सच्चाई और सरकार है. मेरे नियुक्ति के मुझे कई देशों में सफर कार्य है और मुझे सौभाग्य से मौका दिया है कई सभाओं में भाषण देना कि जबकि मैं देख धर्म सभा भाग लिया है मैंने सदस्यों को कई देशों भाषाओं और परंपराओं को पेश करते हुए देखा है. हमारे सुसमाचार के यज्ञ एक महान कार्य है. एक जियोग्राफिकल स्थान या एक देशों के संगतों के साथ सिर्फ नहीं जोड़ी होती है यह पूरी दुनिया भर में फैली हुई है. ये परमेश्वर के पुत्र का महान वापसी की तैयारी कर रहे हैं. भले हमारे गिरजाघर के सदस्यों में विभिन्नता से भरती हो रही है हमारे परिवर्तन परंपरा हमारे अंतर को ऊंचाई देंगे. गिरजाघर के सदस्य होने में हमें ईश्वर के घर में स्वीकार किया जाता है. हम भाइयों और बहनों की तरह बनते हैं. परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया कि इस समाचार को जिन्होंने भी प्राप्त किया है उसके नाम से बुलाए जाएंगे और उसके जाने जाएंगे. एक वादा दिया गया है कि सभी को जो गिरजाघर के सदस्य बनते हैं तुम आप विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घर में हो गए. शब्द विदेशी लैटिन शब्द एक्सट्रेनियस से आता है जिसका मतलब बाहर का या बाहर से. आजकल ये बतलाता है कि कोई बाहर का ही है कई कारण से चाहे वही आदिकरण परंपरा का हाल या आधार के कारण. यीशु मसीह के चेलों की तरह जो संसार में रहना नहीं संसार का होकर हम विदेशी महसूस करते हैं. समय भर से परमेश्वर के लोगों को आज्ञा दी जाएगी कि सभी व्यक्तियों को देखभाल करो जो विदेशी या तुम्हें जिन्हें दूसरी तरह देख पाए. पुराने समय में एक अजनबी को उसी तरह सम्मान दिया जाता था जैसे विधवा के एक आनंद को देता थे. उनकी तरह विदेशी महान कोमलता की स्थिति में थे और उनके जिंदगी रहना वहाँ ये लोगों के सुरक्षा पर निर्भर था. इसराइल के लोगों को खास करके कारीक पर जानकारी मिलता था जो विदेशी तुम्हारे सर्व रहे वो तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उसे अपने समान प्रेम करना क्योंकि तुम भी इजिप्ट देश के विदेशी थे. उनकी धरती पर देखरेख के दौरान पर यीशु के वो एक उदाहरण था जो साधारण जिम्मेदारी और दयालु कार्य भी आगे किया था जो संस्था में नहीं थी जिन्हें चुना नहीं गया था और वो सच्चे आत्मा विश्वासी नहीं उनकी दया और इज्जत मिली उन्हें उनकी शिक्षा और देखरेख का बराबर मिला. उदाहरण में उधारकर्ता अपने समय के बनाए हुए परंपरा के खिलाफ होगा. समारिया के महिला से पानी मांगने के कारण वो जानते और पैसे इकट्ठा करने वाले के साथ बेजान करने बैठ गया. उसने बीत से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया. यीशु ने हमें सच्चा प्यार को ध्यान से देखने को कहा है और अनमोल और पूरी उपहार है उसका कहा, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या वंसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं रत करते? और तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या आने जाते भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। इस गिरजाघर में कोई अजनबी है और कोई बाहर वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ भाई और बहन है। जो आनंद पिता की ज्ञान हमारे पास है भाइयों और बहन में ज्यादा जिम्मेदारी से मदद करता है। जैसे मिज़रेबल के एक कहानी का भाग से यह पता चलता है कि प्रतिभा रखने वाले अब व्यक्ति जो अजनबी है के साथ कैसा व्यवहार से सकते हैं। जॉन वजन जो अभी से कराघर से आज़ाद हुआ है, एक लवी स्वर और भूखा और प्यास के जेला है। ये वक्त छोटे से शहर में उस रात के लिए भोजन और रहन को स्थान को ढूंढता हुआ है। न तो होटल, न तो इन, न तो कराघर मैंने उसे स्थान मिला। आते में बिना शक्ति के वो शहर के बिशप के दरवाजे के आगे गोश हो गया। वो अच्छा पधारी बालजीन के आटे तो जानता था, मगर उसने भिखारी को अपने घर में इन दया के शब्दों को साथ आमंत्रित किया। यह हमारा घर नहीं है, यह यीशु मसीह का घर है। इस दरवाजे पर कोई भी आ सकता है या कोई रुकावट नहीं है, चाहे नाम हो या नो, मगर चाहे पीड़ा हो, तुम दर्द में हो, तुम भूखा और पैसे हो, तुम्हारे स्वागत है। मुझे तुम्हारा नाम जानना कि कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि तुम्हें अपना नाम बतलाने से पहले तुम्हारे पास कहता मुझे पता है। वर्जन ने गर्भवत अपने अपने खाकों को खोला से मैं तुम्हें पहता था मेरे नाम। हाँ, बिशप ने उत्तर दिया, तुम मेरे भाई हो। इस गिरजाघर के हमारे वर्ष और हमारे परिषद नहीं शामिल है, वो यीशु मसीह के है। वो हमारे शबघर में आता है, हमें घर जैसा महसूस होना चाहिए। सभी का स्वागत करना बहुत जरूरी है। यह दुनिया जिसमें हम रह रहा है बहुत ही नुकसान पहुंचा चाहती है। इस दुनिया की बढ़ती हुई बदलाव महान परमेश्वर की सेवा करती है। उसके चुने हुए धरती के चेहराओं को से सिर्फ नहीं इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरों के भेजे हुए प्रचारकों की तरह, बल्कि दूसरे स्थानों से हमारे शहरों और पड़ोसियों में बस रहे हैं। कई बिना जाते हैं प्रभु के कारण वो पहुंचते हैं जहां वे सुसमाचार के सुन सकते हैं और उसके साथ रह सकते हैं। ये हो सकता है कि जो अगले इंसान जो तुम्हारे वार्ड के सुसमाचार में बदलाव कर वो तुम्हारे दोस्तों और जाने में है। तुम सुबह उनके पहनवा भाषा कपड़े पहनने की तरीका या चमड़े की रंग से जान जाएंगे। ये इंसान दूसरे धरन का हो सकता है, दूसरे स्थान और दूसरे रोशना का। सेवा करने प्रवृत्तों की एक जरूरी जिम्मेदारी है। रोनिक प्रस्तुत मल्केजिक प्रवृत्तों परिषदों को बनाने के साथ मिलकर कर काम करना होता है बिशप के निर्देशन पर, ताकि सभी इंसान का स्वागत प्यार और दया के साथ हो। घरेली शिक्षकें और भेंट शिक्षकें सावधान रहेंगे ताकि कोई भी छोटे का अंधेका नहीं है। हम सब खो सक साथ मिलकर वोट और शाखों में धर्मकता को बढ़ाने के लिए एकता के काम करना होगा। एक अच्छा एकता उदाहरण परमेश्वर के लोगों का मसीह को अमेरिका को बैन करने का बात है। वहाँ के लेक में ना लेमिनेटों ना तो कोई भेदभाव ही था, परंतु सभी एक समान मसीह के संतान था और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। एकता सदस्य को अधिका और अकेला करने से नहीं होता है जो अगर कमजोर देखता है, और सिर्फ उन लोगों से साथ मिलाप जो इस तरह के हैं। दूसरा, एकता बढ़ता है जब नया खास जरूरतमंद मनन की स्वागत और सेवा होता है. ये सदस्य गिरजाघर के लिए आशीर्वाद है और हमें अवसरण प्रदान करते हैं. तो मेरे भाइयों, और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई भी तुम्हारे गिरजाघर इमारत के दरवाजे पे आगे उन तक जाओ, उनका स्वागत आभार और बिना कोई बदलाव के करो. अगर जिन्हें तुम नहीं जानते तुम्हारे सभा में आओ, उनके अच्छी तरह से स्वागत करो और उन्हें अपने पास बताए बैठिए. कृपया करिए करने को पहला बनने ताकि वे स्वागत और प्यार महसूस करें, ना कि तुम इंतजार करो उन्हें तुम्हारा पास आने के लिए. तुम्हारे आदिम स्वागत के बाद तरीकों को जानो जो तुम उनको सेवा कर सके. मैंने एक बार एक वोट के बारे में सुना जहां दो बेरी बहनों का बपतिस्मा के बाद सहायक संस्था के दो महान बहनों ने चीन भाषा को सीखने को सोचा ताकि वे नए बदलाव के साथ अच्छी तरह से वार्तालाप कर सके. कितना महान उदाहरण है. मैं गवाही देता हूँ कि हमारे स्वर्ग के पिता के कोई भी अजनबी नहीं है, या पर कोई नहीं है जो उसने अनमोल ना हो. पिता ने के साथ मैं गवाही देता हूँ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, मगर हर जाति में जो उसे डरता और धर्म का काम करता वो उसे बहता है. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब प्रभु अपने भेड़ को अंतिम दिन में इकट्ठा करेंगे, वो हम सब के कहेंगे, मैं एक अजनबी था और तुम मुझे अपनाया. फिर हम उसे कहेंगे, कब हमने तुम्हें अजनबी की तरह देखा और अपनाया? वो हमें जवाब देगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें जो मेरे छोटे से छोटे बहनों भाइयों में के किसी के साथ किया वो मेरे ही साथ किया. यीशु मसीह के नाम से आमीन.
When I was sustained as a general authority last April, I was serving as a mission president in India.
जब हम सस्टेन गया था जनरल अथॉरिटी के लिए, तो मैं मिशन प्रेसिडेंट के लिए, मिशन प्रेसिडेंट जो इस गिरजे में गए हैं, जब मेरे संपर्क हुआ पिछले अप्रैल में महाअधिकारी के रूप में, एक बहुत ही सफल प्रचारक जिसके साथ बहन फ्रांचोक में ने सेवा प्रदान किया था, एल्डा पर्वक नेपाल का, वो सिर्फ दो सालों के गिरजाघर का सदस्य था जब उसने बेंगलोर मिशन में सेवा करने का नियुक्ति हुआ, जो एक अंग्रेजी भाषा का मिशन था. वो तुम्हें बतलाना के वो ठीक से तैयार नहीं था, जो कि समझने लायक था. उसने एक प्रचारक को थक दिया था, नहीं देखा था जब वे थक हो खुद एक नहीं बना. वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता था अच्छी तरह से कि वो अपनी कॉल में लिखे. ठीक तक कपड़े मिलने के बाद भी उसने कहा वो अधूरा महसूस कर रहा था, और हर एक दिन शुरुआत के हफ्तों में उसे अपने मिशन के लिए समय के बारे में बतलाया. ना सिर्फ अंग्रेजी कठिन था, मगर कम ही चेतावनपुर था. उसके अलावा मैं भूखा थका हुआ और घर के याद आ रही थी. पहले ही परिस्थितियों मुश्किल थी. मेरा इरादा पक्का था. मैं कमजोर और अधूरा महसूस कर रहा था. मैं उन समय पर स्वर्ग के पिता से प्रधानकर्ता मदद के लिए हर बार मुझे सहानुभूति महसूस होती. एंड कोट. पहले ही प्रचारक कार्य एल्डा पोकरिल के लिए नया और चेतावनीपूर था. उसे ज्यादा विश्वास और अधिकारी के सेवा की हमेशा और शिक्षा और कारण चाहता. वो धर्मशास्त्र, प्रीच माई गॉस्पेल और अपने मिशन नेताओं को सीखता था अंग्रेजी में, और एक बढ़िया नेता. मिशन के बाद कुछ समय नेपाल में रहने के बाद वो इंडिया लौटा अपने पढ़ाई पूरी करने के। जनवरी से उसने न्यू दिल्ली में ब्रांच अध्यक्ष की सेवा की है, क्योंकि प्रचारक रहते समय उसने सच्चाई बनती अनुभव की। कैसे एक जवान पुरुष ने, जिसने कभी एक प्रचारक को नहीं देखा था, ऐसा बन गया जिसके पास धार्मिक शक्ति थी? कैसे तुम एक प्रचारक के रूप में धार्मिक शक्ति पाओगे? घरों में जाने, ईमेल द्वारा और उनके लोगों के दिलों तक जो तुम्हारे मिशन में रहते हैं। पहले की तरह धर्मशास्त्र और जीवित भौक्षिकता देवतों के पास जवाब है। जब सुसमाचार पहले बार इंग्लैंड में प्रचार हुआ था जुलाई 1837 में, प्रभु ने घोषणा की, जिस किसी को भी वो मेरे नाम में भेजा जाएगा, तुम्हारे भाइयों के बोली की जरे 12 का प्रतिशत जिन्हें सिफारिश किया गया है और अधिकार दिया गया है, वो तुम्हारे जवाबी शक्ति मिलेगी और राज्य के द्वार दरवाजा खुलने के लिए किसी भी देश में जहां कहीं तुम भी तुम्हारे भेजा जाइएगे, जहां कभी भी तुम भेजे जाओगे, किसी भी मिशन में तुम्हें आयोजित किया जाएगा। ये जानने की 12 के प्रतिशत का एक सदस्य ने उस आयोजना की सिफारिश की है तुम्हें प्रभु की भविष्यता द्वारा। प्रभु ने तब इस वादे को पूरा करने का शर्त को बतलाया। प्रभु ने कहा कि जब तक, मतलब वादा तब पूरा होगा जब वो यहाँ के भेजे गए प्रचारक खुद की विनित न बनने, उसने सामना, दूसरे उसके शब्द के पालन करने के, तीसरे उनके आत्मा की आवाज़ ना सुनने। प्रभु ने वादा स्पष्ट किया, अगर धार्मिक शक्ति जरूरी है परमेश्वर के राज्य के दरवाजे को खोलने के लिए, उसे देश में जानने तुम्हें भेजा जाएगा, तुम्हें विनित आज्ञाकारी और आत्मा को सुनने के पालन करने की क्षमता रखनी चाहिए। ये तीन गुण बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। अगर तुम विनित रहोगे, तुम्हें आज्ञाकारी रहना होगा। अगर तुम आज्ञाकारी रहोगे, तुम आत्मा को महसूस करोगे। आत्मा जरूरी है, क्योंकि जैसे प्रधान एजरन टैफ मैंसन ने सिखलाया, आत्मा के बिना तुम कभी सफल नहीं हो, भले कि तुम्हारे पास गुण और क्षमता है। मिशन आदेश के रूप में मैं अक्सर प्रचारकों को वेतलाप करते जो संदेश करते, क्योंकि वो अभी पूरी तरह के योग नहीं हैं, वो पूरी तरह से अपने धार्मिक सदवियोग में नहीं जी रहे हैं। चाहे कितने खड़ी मेहनत हो वो करते हैं, कितनी अच्छाई वो करते हैं, वो शक्ति नहीं मिलती है और पवित्र आत्मा के साथ नहीं आजमा पाते जब तक वो अपने आप को विनीत नहीं कर बना पाते लेते हैं पूरी तरह से पश्चाताप करके और उधारकर्ता के ऊपर और दया के लेते हैं। प्रभु अपने सेवकों को विनीत रहने के कहता है, क्योंकि धार्मिक चंगाई पाने के लिए टूटे हृदय और जरूरत करना पड़ती है। ये सच सूची की कितनी सच्ची होती है, जिसे मिट्टी को फोड़ा जाता है, गेहूं को बोना के लिए गेहूं को तोड़ा जाता है, रोटी बनाने के लिए रोटी को तोड़ा जाता है, प्रति भोज को चिन्ह पाने के लिए। जब एक पश्चातापी व्यक्ति प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, एक टूटे हृदय और एक पश्चातापी आत्मा से वो संपर्ण बन जाता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, संपर्ण बन जाते हैं, यीशु मसीह के पश्चाताप के जरूरी हमें और बहुत कुछ उधारकर्ता के भेंट करने पड़ता है और उनकी जी सेवा के। हाँ, उनके पास आओ और अपने पूरी आत्मा को उनके लिए आहुति में दे दो। अगर तुम भोज के दबे हुए हो, पश्चाताप करते चाहते हो, कृपया आशय तुरंत करो। जब उधारकर्ता ने रोगियों को चंगा किया, उसने उसके उन्हें निमंत्रण दिया। धर्मशास्त्र में बतलाता है कि उन्हें उसी समय ये तुरंत वाशा दी। अपने धार्मिक दबतियों प्रसिद्ध की चंगाई के शक्ति तुम्हें आत्मा शांति देगी और पवित्र आत्मा को महसूस करने के क्षमता। उधारकर्ता के बलिदान नापा नहीं जा सकता, मगर हमारे पाप भले ही अनगिनत और गंभीर हो, वो गिने और स्वीकार ठुकराया और माफ किया जा सकता है। प्रभु ने कहा है कि उनके बहुत खुशियाली मिलती है जब कोई पश्चाताप करता है। प्रभु ने एक शक्तिशाली वादा किया है जब उसने कहा कि अगर हम सद्गुण को हमेशा अपने सोच को सुधार बनाए दे तब हमारे निम्रता मजबूत होने परमेश्वर की उपस्थिति में जब तुम सद्गुण हो का दिया जाओगे तुम संतपूर्ण निधन महसूस करोगे। परमेश्वर के आज्ञा अपने योग्यता में और तुम्हारे पास आत्मा की शक्ति होगी। कुछ लोग जो गिरजाघर के नए सदस्य हैं ये जो लोग हाल ही में पूरी गतिविधि में आए हैं कहें मैं अब योग्य हूँ और सेवा करने की इच्छा रखता हूँ मगर मैं नहीं जानता कि क्या मेरे ज्ञान प्राप्त हो है। अप्रैल में प्रधान थॉमस मेंसन ने सिखलाया सच्चाई का ज्ञान और हमारे गहरे सवालों का जवाब तब मिलता है जब हम आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर का आज्ञाओं के प्रति। यहाँ जानने की हमारी आज्ञाकर्ता की जरूरी हम ज्ञान पाता करते हैं। अन्य लोग महसूस करेंगे कि उनके पास कम गुण है चाहते कि अनुभव हर दिन के लिए। अगर तुम्हारे ऐसी चिंतावनी है एल्डर प्रोकिल का अनुभव याद करो अच्छी तरह तैयारी करो और ये जानो कि स्वर्ग के पिता तुम्हारे विनित और आज्ञाकारी खुशियों के दोंगे। एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट ने ये प्रस्तुत भाषण 12 शैला दिया जब हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके बच्चों की सेवा बेमतलब से करते हैं परमेश्वर से प्रत्रिक शक्ति मिलती है और ज्यादा शक्ति प्राप्त होता है जब हमारे पास नहीं है। हमारे देख रेख हमारे गुण हमारे क्षमता बनती है क्योंकि प्रभु ने मजबूती और शक्ति प्राप्त करती है। जब हम प्रभु और उनके अच्छाई में भरोसा करेंगे परमेश्वर अपने बच्चों को तुम्हारे जयरा आशीर्वाद देगा। नेवदा का एल्डर होलिंग्स ने अपने मिशन की शुरुआत में यह सिखला गया इंडिया पहुंचने के लिए 3 दिन बाद वो बहन फुंग और मेरे साथ राजमंड्री गया जो उसका पहला इलाका था। उस शाम एल्डर होलिंग्स और एल्डर गणपुर राम एक गिरजाघर सदस्य के उनकी माँ से मिलने गए। वह माँ गिरजाघर के बारे में सीखना चाहती थी क्योंकि उसने देखा था कि कैसे सुसमाचार को प्रोहित जीवन में आशीर्वाद। बहन फुंग भी उनके साथ गई थी और क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं देखा और तेलुगु बोलती थी सीखा कि भाई वहाँ अनुवाद करने के लिए। एल्डर होलिंग्स को फर्स्ट विजन पहली धरती को बारे में पढ़ाया था भविष्यता जोसेफ के शक्ति इस्तेमाल करके प्रार्थना और वो बहन फुंग के और मुद्दा और पहुंचा क्या मैं हर शब्द इसी तरह कहूं ये जानते हुए कि उसे अनुवाद होगा। उसने जवाब दिया उसके एक शब्द के इस्तेमाल करने ताकि आत्मा उसकी गवाही देगा। जब ये नए मिशनरी ने दिल से पहली दृष्टि को सिखलाया भौष्विकता के शब्दों को इस्तेमाल करके उसके प्यारे बहन का चेहरा बदल गया आंसू गिर पड़े। जब एल्डर होलिंग्स ने उस विश्वास संदेश को अंत किया उसने शब्दों को अनुवाद करने से पहले उसने अपने भाषा में आंसू बहाते हुए कहा क्या मैं बपतिस्मा ले सकती हूँ और क्या तुम मेरे बेटे को सिखलाओगे। मेरे जवान साथी सेवक दरवाजा और दिल हर दिन सुसमाचार संदेश के लिए खुलती है एक संदेश जो आशा और शांति और खुशहाली देता है दुनिया भर के परमेश्वर के बच्चों को। अगर तुम विनीत आज्ञाकारी और आत्मा की आवाज़ को सुनो वाले होगे तुम बहुत खुशहाली पाओगे और प्रचारक के सेवा में कितना अच्छा मौका है प्रचारक होने के एक समय जब प्रभु अपने कार्य को जल्द आगे बढ़ा रहा है। मैं हमारा उद्धारकर्ता और उनके दिव्य आज्ञा जो था इसलिए तुम जानकर सब जलती के लोगों को चेला बनाओ कि गवाही देता हूँ ये उनका गिरजा है। वो उसकी अगुवाई जीवित भविष्यता और देवताओं के जरिए करता है। अगले 1 घंटे में प्रथम अधेशक हमें सिखलाएगा हम मोमन की तरह सिर दे, लेकिन ताकि जब हम पुकारेंगे हम योग्य रहेंगे, आत्मा की शक्ति से घोषणा करेंगे। सुनो, मैं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का एक शिष्य हूँ। उनके लोगों में उनकी वाणी की घोषणा करने के लिए मैं पुकारा गया हूँ, जिसके उनको आनंद जीवन मिले। यीशु मसीह के नाम से आमेन।
The choir and
गायक मंडली और सब आप खड़े होकर गाएंगे, Do What Is Right। संगीत के अंत में प्रधान डीटा एफ उगडोर्फ, जो प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार है, हमें भाषण देंगे। It will be, फिर मेरे सौभाग्य होगी तुम्हें भाषण देने में।
What a beautiful sight that is, to be among you priesthood holders here in the conference center and
aur ye priesthood ke sath yahan pe rehne ke bahut hi abhari hai, ye bahut hamare liye shobhagya ki baat hai ki hum aapke hain, magar jab tak हम फिर उठने की इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर के मार्ग की ओर बढ़ते रहते हैं। हम असफलता से कुछ सीख सकते हैं और खुश हो सकते हैं। जब मैं छोटा था, मैं गिरने के बाद जल से उठ सकता था, और अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तब गिरने के बाद उतनी जल्दी नहीं होती है। मैं उठने के बाद बहुत कोशिश की, पर नहीं उठ पाया। मैं तो गिर गया था और मैं उठ नहीं सकता था। मैं शारीरिक रूप से ठीक था, मगर मैं गोड़ से टूट गया था। इसलिए मैंने अपने हेलमेट और गॉगल्स को ठीक किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अन्य स्की करने वाले मुझे देखे। मगर कल्पना कर सकता था कि मैं इच्छा के तार तरह बैठा था जब तक वे आराम से स्की करते खुशी चलाते रहे कि कैसे हो भाई उपदोफ। मैं सोचने लगा कि कैसे मुझे उठाया जाए। उसी समय मेरा पोता मेरे पास आया। मैंने उसे बताया कि क्या हो गया था, मगर वो मेरे सफाई को नहीं सुन रहा था कि मैं क्यों उठ नहीं पा रहा। उसने मेरे आंखों में देखा, हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ लिया और एक मजबूत स्वर में कहा, आजा, अब आप उठ सकते हो। तुरंत ही मैं खड़ा हो गया। मैं अब भी विश्वास से सिर हिला रहा हूँ। जो एक क्षण पहले नामुमकिन लग रहा था, तुरंत वास्तव में हो गया, क्योंकि एक 12 वर्षीय लड़का ने हाथ बढ़ाया कर मुझसे कहा, अब आओ उठ सकते हो। इसे मुझे निडरता, उदास या ताकत मिला। भाइयों, हमारे जीवन में कुछ ऐसा पल आते हैं होंगे जब मुसीबतों के निकले और आगे बढ़ने हमारे लिए नामुमकिन लगता है। उस दिन बर्फ से थके स्लोप पर मैंने कुछ सीखा। पहले ही हम सोचते हैं कि हम उठ नहीं पाएंगे। उस समय भी आशा होती है, और कभी कभी हमें किसी की नज़र की ज़रूरत होती है जो हमारे हाथ थामे और कहे, अब आप उठ सकते हो। हम शायद सोचेंगे कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा कमी और असफलता खा छा होता है कि उस प्रभाव महिलाओं पर ज्यादा है। मैं नहीं सोचता हूं कि ये सच है। पुरुष भी दोष, उद्देश्य और असफलता महसूस करते हैं। हम ढोंग करेंगे कि ये बातें हमें परेशान नहीं करती है, पर ये करती है। हम अपने असफलताओं और कमियों से इतने दुखी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं सफलता नहीं पाऊंगा। हम शायद सोचेंगे कि क्योंकि हम पहले गिर पाते हैं, हमारे किस्मत में गिरना लिखा है। जैसे एक लेखक ने कहा है, हमने नाव की तरह है जो जल द्वारा किए गए और जरूरत के स्थान पर ही लौटा है। मैं पुरुषों के जो स्वभाव और स्वभावता की है, परमेश्वर के एक राज्य को समझाना की कार्य को जोड़ देता है। और क्योंकि वो एक या जो बार असफल हुए थे, यह कितने संभावना रखने वाले पुरुष थे जो पुरोहित रखने वाले और परमेश्वर के सेवक थे। मगर उन्होंने ठोकर खाकर निराश हो गए, इसलिए वो अपने पुरोहित की जिम्मेदारी हट गए और आसान पर काम योग्य और कार्य करने लगे, और इसलिए वो बदलते गए। सिर्फ एक जीवन के परचाई छोड़ने हुए जो वो जी सकते थे। कई हमारी संभावनाओं से उठे नहीं जो उनका जानस्थीन अधिकार है, जैसे शायर ने देख जाकिर और ये बक्समिता जी हुई है। कोई भी असफल होना नहीं पसंद करता है, और हम खासकर नहीं पसंद करते हैं जब अन्य लोग, जैसे जिन्हों हम प्रेम करते हैं, हमें असफल होते देखे। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी इज्जत और आदर करे। हम शूरवीर बनना चाहते हैं, मगर हम मनशाली जीव बिना मदद और अनुसार के जल्दी कर गए हैं। भाइयों, हमारी किस्मत हमारे गिरने की सहने से नहीं टोलना जाता, मगर कितनी बार हम उठेंगे, धूल साफ करेंगे और आगे बढ़े है देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये मरणशालिक जीवन एक परीक्षा है, मगर क्योंकि स्वर्ग के पिता हमारे संपूर्ण प्रेम करते हैं, वे हमें दिखलाता है कि जवाब कहाँ मिलेगा। उन्होंने हमें हमारे जीवन के उजाने मार्ग और नए मुसीबतों पर कहा है। भविष्यता के बोल से नक्शा के भाग है। जब हम बहक जाते हैं, जब हम गिरते हैं, ये चले जाते हैं हमारे स्वर के पिता के मार्ग से। भविष्यता के बोल हमें फिर से उठाकर और मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाता है। सदियों से भविष्यता ने जो सिद्धार्थों को सिखलाया है, उनमें से एक है जो बार बार बतलाता जाता है, और मनुष्य पश्चाताप कर सकते हैं, राह बदल सकता है, बदलते और अनुशासन के सच्चे मार्ग पर वापस जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपने कमजोरियों, गलतियों या पापों में आरंभ नहीं करना चाहिए, और इसमें एक जरूरी अंतर है। पाप के लिए सुख जो पश्चाताप तक ले जाते हैं, और वो सुख जो निराश को देता है। पॉल ने सिखलाया परमेश्वर भक्ति का शोक आशा पश्चाताप उत्पन्न करता है, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक बदलाव और आशा प्रेरित करता है, प्रेरित के द्वारा। संसारिक शोक हमें बराबर करता है, बर्बाद करता है, असेशन बनाता है, और हमें अन्य भगवान के लिए जानता है और ले जाता है। परमेश्वर भक्ति का शोक परिवर्तन और हृदय को बदलाव लाता है। वो हमें पाप से नफरत और अच्छाई से प्रेम करता है। वो हमें उधार मसीह के प्रेम की रोशनी में चलना सिखलाता है। सच्चा पश्चाताप बदलाव के बारे में है, स्थान और पीड़ा नहीं। हाँ, दिल से पड़ाव या सच्चा शोक आज्ञा न मानने का अक्षा पेड़ा देता है, मगर वो जरूरी खत्म है पश्चाताप में। मगर जब दोष खुद ही नफरत करता है, हमें उतने से रोकता है, जब हम पश्चाताप से उठ नहीं पाते। भाइयों, एक और बेहतर तरीका है, हम उठ और परमेश्वर उठे और परमेश्वर की भक्त बने। हमें पास एक शूरवीर है, एक उद्धारकर्ता जिसमें हमारे लिए अंधेरे जगह पर चला। उसने खुद को हमारे पापों के लिए दिया। किसी के पास इसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। यीशु मसीह निर्दोष मेमना ने खुद को बलिदान बनाया और हमारे पापों का धम चुकाया है। अंतिम कौड़ी पर भाकर उसने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया, उसने हमारे बोझ, हमारे दोष अपना कंधे पर लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम उसके पास आने का निर्णय करते हैं, जब हम उनका नाम अपने ऊपर लेते हैं, निर्धरता से छेलपान के मार्ग पर चलते हैं, तब प्रायश्चित की द्वारा हमें सिर्फ खुशहाली और शांति इस दुनिया में नहीं, पर आनंद जीवन आने वाले दुनिया में भी मिलेगा। जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, गिरते हैं, हम सच्चाई पश्चाताप का मतलब सोचे, इसका मतलब है परमेश्वर की और अपने हृदय को इच्छा को मोड़ना और पाप को ठुकराना। सच्चे मन से पश्चाताप करना आपने साथ स्वर्ग के आश्वासन लता है, और कि अब हम उठ सकते हैं। शैतान का एक तरीका हमें आगे बढ़ाने से रोकने का हर आज्ञा उलझना के हम कौन है और हम क्या चाहते हैं। हम अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहते हैं, मगर हम अपने मर्दाने शौक को भी पूरा करना चाहते हैं। हम वजन घटना चाहते हैं, पर हम स्वदेश भोजन भी खाना चाहते हैं। हम मसीह जैसा बनना चाहते हैं, पर हम उसके गद्दी चालक पर अपना क्रोध भी दिखलाना चाहते हैं, जिसे गलत ढंग से घटी चलाए। शैतान का लक्ष्य है कि वो हमारे अनमोल सच्चे खुशहाली और आनंद सिद्धार्थों को बदलाने का दिखवा दे किसी चमकीले जीवार के लिए, जो सिर्फ एक दिखावा और नकली खुशहाली और आनंद है। एक और तरीका शैतान इस्तेमाल करता है हमें उठाने से निराश करने का है, हमें दिखलाए कि आज्ञा का हमारे ऊपर थोपा गया है। मुझे लगता है कि मनुष्य का प्रगति ऐसा है कि वो अपने ही विचार को अपनाता है, बाकी को ठुकराता है। अगर हम स्वस्थ भोजन और कसरत सिर्फ डॉक्टर का बदलाया होकर सलाह सोचेंगे, हम नहीं फेल सफल होंगे। अगर हम चुनाव को खुद की मिलान में देखेंगे और क्या बना चाहते हैं, जैसे ये संभव है कि हम उन्हें प्राप्ति निर्भय और सफल होंगे। अगर हम होम टीचिंग को सिर्फ स्टेक प्रेसिडेंट के लक्ष्य समझेंगे, हम शायद उन्हें कार्य में लापरवाही करेंगे। अगर हम अपने लक्ष्य समझें, वो जो हमें मसीह जैसा बनाए और औरों के दृश्य करने के कारण करते हैं, हम सिर्फ अपने जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर पाएंगे और करेंगे। अक्सर हमारे दोस्त या परिवार हमारी मदद करते हैं, मगर हम हमारे इर्द गिर्द अच्छाई तरह देखेंगे तो दयालु हृदय से देखेंगे, हम मुख्य पहचानेंगे जो प्रभु हमारे सामने रखते हैं, औरों को उठाते में मदद करेंगे जो और अपने सही समाधानों तक पहुंचेंगे। धर्मशास्त्र कहता, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझो कि मनुष्य उनके लिए है परंतु प्रभु के लिए करते हो। यह धार्मिक शक्ति है, महान स्रोत है कि हम ईमानदारी और सच्चाई के जीवन जिएंगे और अपना नजर आनंद पर देंगे। अगर हम इस दिव्य लक्ष्य को विश्वास के नजर देंगे, वो हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। जब हमारा ध्यान जिम्मेदारी देख सफलताओं पर टिका रहेगा, हम शायद अपना मार्ग खो देंगे, भटक जाएंगे और गिर जाएंगे। अपने नजर को ऊंची लक्ष्य पर टिकने से हमें मदद मिलेगा, बेहतर पुत्र और भाई, दयालु पिता और ज्यादा प्यारे करने वाले पति बनने मिलेगा। जो लोग अपने हृदय को दिव्य लक्ष्य पर टिकाते हैं, शायद कभी कभी गिर पड़ते हैं, मगर वो हारेंगे नहीं। वो परमेश्वर और उनके वादों पर भरोसा करेंगे, वो फिर भी उठेंगे सही परमेश्वर में उजाला आशा के साथ और महान भविष्य के प्रेरणापारी दृष्टि के साथ। वे जानते हैं कि वो अब उठ सकते हैं। हर इंसान, जवान या बूढ़ा, को खुद का अनुभव हो गया गिरने का। गिरना हम मनुष्य लोगों का काम है, मगर जब तक हम फिर से उठेंगे, इच्छा रखते हैं और परमेश्वर के दृढ़ धर्मशास्त्र मार्ग के लिए बढ़ रहते हैं, हम असफलता से कुछ सीख सकते हैं और बेहतर और खुश हो सकते हैं। भाइयों, ऐसा समय होंगे जब तुम सोचोगे कि तुम खड़े नहीं हो सकते या आगे बढ़ नहीं सकते। कृपया उद्धारकर्ता और उसके प्रेम पर भरोसा करो। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और पुनर्स्थापित सुसमाचार की शक्ति और आशा के साथ तुम आत्मा विश्वास के साथ बात पाओगे। भाइयों, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके प्रार्थना करते हैं। चाहे तुम एक जवान पिता, एक बुर्ज पुरोहित रहने वाले हो या एक नए नियुक्त हुए डिकन हो, हम आपके लिए सचित है। प्रभु आपके लिए सोचते हैं। हम जानते हैं कि कभी कभी आपका मार्ग कठिन होगा मगर मैं आपको ये वादा करता हूँ कि प्रभु के नाम से उठ जाओ और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के जैसा बनो और उसके दिन तुम पीछे देखो और आनंद कर्तव्य से बाहर जाओगे क्योंकि तुम्हें प्रायश्चित के भरोसा किया और उसके संभालन और सुनने मजबूत करने वाले शक्ति पर। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, चाहे कितने भी बार तुम फिसले या गिरे होगे, उठ जाओ। तुम्हारे किस्मत बहुत विशाल है, ऊंचे होकर खड़े हो जाओ और यीशु मसीह के पुनस्थापित सुसमाचार के रोशनी में चलो। तुम नहीं जानते तुम कितने बलवान हो, तुम अपने कल्पित या कल्पनों नहीं कर सकते। आपके शक्ति हो, इसी में कही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
All of us.
मैं हम सबको आशीर्वाद मिला है दूसरों के जिम्मेदारी के देखभाल के लिए। परमेश्वर की पुरोहिति के रखने के मतलब है कि परमेश्वर जिम्मेदारी देता है उसके बच्चों के अनंत जीवन के लिए। ये सच है, ये आश्चर्यजनक है और कुछ समय पर हम खुशी महसूस करते हैं। यहाँ पर आज रात एल्डर्स के परिषद अध्यक्ष सुन रहे हैं जो जानते हैं कि महा क्या रहा हूँ। यह है जो तुम में से एक से साथ हुआ था, यह तुम में से कई के साथ हुआ था और एक भी ज्यादा भर। एक एल्डर की तरह तुम्हें पता नहीं कब मदद के लिए कहा जाए। उसने अभी ही जाना कि उसे अपनी पत्नी और द्वारे शिशु लड़के को आज उस इमारत जहाँ वह रहते थे से बगल की दूसरी में परिवर्तन कर रहे हैं। उसने और उसके पत्नी के पहले ही एक दोस्त से पूछा कि क्या वे उसके लोरी को एक दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरेलू और व्यक्तिगत चीज़ों को वहां पहुंचाने के लिए। दोस्त ने उन्हें लोरी को इस्तेमाल करने को दिया। जवान पिता ने सब कुछ न कुछ उनको पास था जो लोरी में लड़ा मगर पहले कुछ मिनटों में उसके कमर में दर्द हुआ। वो दोस्त जिसने लोरी को दिया था बहुत ही व्यस्त का काम में माना नहीं कर सका। जवान पिता चिंता में हो गया। उसने तुम्हें उसकी अल्डर्स के परिषद बारे में सोचा। उस समय जब वो मदद का पहुंचा शाम हो गया था। उस दिन शाम को गिरजाघर सभा था। तुमने पहले ही अपनी पत्नी को घरेलू चीजों को लेकर उस दिनों मदद करने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम ये भी जानते थे कि तुम्हारे परिषद के सदस्य खास तौर पर सबके विश्वासी हुए जिन्हें तुम हमेशा मदद के लिए कहते वे भी उसी स्थिति में थे जैसा तुम। प्रभु को पता था कि तुम्हें मुसीबतों के दिन देखना पड़ेगा। जब उसने तुम्हें इस नियुक्ति को दिया था तो उसने तुम्हें एक कहानी दिया। एक नीति कहता है बहुत व्यस्ती प्रवृत्ति रखने वाले के लिए कभी हम दयालु समर्थन की कहानी कहते हैं मगर ये एक महान पुरोहितों के रखन वाले की सच्चाई कहानी की बेस्ट अंतिम दिन है। ये कहानी अधिक बाहर दाले पुरोहितों सेवक की कहानी है। सिर्फ ये याद रखो कि तुम समर्थन और पर्दाय पादरी नहीं या लिवाइट जो घायल आदमी के बगल से गुजर गया था। तुम्हें इस कहानी को नहीं सोचा होगा जब इस तरह के चुनौतियों को झेला होगा मगर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें दोबारा खुशी महसूस करोगे जब वे फिर आएंगे। हमें सुसमाचार में यह नहीं बतलाया गया कि क्यों समर्थन जेरूशलम के रास्ते से जेरिको को जा रहा था। यह ऐसा नहीं था कि वह अकेला घूम रहा था बल्कि वो जानता था कि चोर बेचारे को इंतजार कर रहे थे। वो खास सफर पर था और सोचा कि उसके पास सवारी था, तेल और डाकरस भी। प्रभु के शब्दों में समर्थन जब उसने घायल आदमी को देखा रुका क्योंकि उसके पास दया था। दया
दया को सिर्फ महसूस नहीं किया, उसने मदद किया। हमेशा कहानी का मतलब को समझो। और उसने उसके पास आकर उसके गांव पर तेल और धाकरस बांध कर पति बंधी और अपने स्वरी पर चढ़ कर सराय में ले गया और उसकी सेवा अतल की। और दूसरे दिन उससे दो तीन दिनार निकला कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसके सेवा अतल करना और को जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर देगा। तुम और पुरोहितों की रखने वालों को नियुक्ति को करने के लिए कम से कम तीन विश्वास होना चाहिए। पहला, प्रभु तुम्हें देगा अगर तुम मानोगे। दिया का वो एहसास जो वो महसूस करता है ज़रूरतमंदी के लिए। दूसरा, वो दूसरों को बजेगा सराय के मिलाक की तरह तुम्हारे साथ सेवा में मदद के लिए। और तीसरा, प्रभु दयालु समर्थन की तरह और ज़्यादा फल देगा उनके ज़रूरत पड़ने पर मदद करने के। तुम प्रसाद अध्यक्षों के एक से भी ज़्यादा बार ये विश्वास से किया है। तुमने दूसरों प्रभु के पुरोहिती रखने वालों को मदद के लिए कहा है, जानते हुए कि वे दया के साथ करेंगे। तुम डरे नहीं उनसे पुरुषों को जो पहले भी मदद कर चुके थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि वे दया को आसानी से महसूस करते हैं। तुम उनसे पूछते हो या जानते हुए कि उन्होंने पहले भी प्रभु के दया को महसूस किया था जब उन्होंने मदद करने को चुना था। तुमने कुछ पहले से ही व्यास को चुना था, जानते हुए कि जितना ज़्यादा बलिदान वे देंगे उतना ही ज़्यादा दया प्रभु उन्हें देंगे। जिन्होंने पहले भी मदद किया था ने उदारकर्ता का महान आभार को महसूस किया था। तुम्हें प्रेरणा मिली होगी किसी को लोरी में चीज़ रखने और उतारने के मदद को लेने के लिए। एक नेता की तरह तुम्हें अपने परिषद सदस्यों और उनके परिवारों को अच्छी तरह जानते हो। प्रभु उन्हें बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। वो जानता है कि किसकी पत्नी की ने खुशी को महसूस किया था क्योंकि उसके पति ने समय पर वो किया था जो उसे ज़रूरी था उसके देखभाल के लिए करना। वो जानता है कि कौन सा बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा। अपने पिता को एक बार फिर मदद करने जाने देखकर ये अगर बच्चों को यह महसूस हो कि उसके ज़्यादा ज़रूरी का उनके पिता की उस दिन उनके साथ समय को बताने के लिए, मगर उसे यह भी पता है कि किसे निमंत्रण की ज़रूरत है सेवा के लिए, मगर उस तरह के व्यक्ति न हो जो मदद करना पसंद करना यह चाहता है। तुम अपने परिषद के सदस्यों को बहुत अच्छे तरह से नहीं जानते, मगर परमेश्वर जानता है। तो जो तुम्हें ताकि भर गया था है तुम्हें प्रार्थना किया है यह जानने के लिए कि किसके सेवा की मदद को मानेगा। प्रभु को पता है कि आशीर्वाद मिलेगा मदद को मानेंगे और किसके परिवार को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये प्रतिकारण है जो तुम अपने लिए आशा कर सकते हैं जो पुरोहितों में आगे बढ़ते हैं। मैं ये छोड़े होते देखा जब मैं एक जवान पुरुष था। मैं प्रार्थना सहायकता पदाधिकारी परिषद का बिशप ने मुझे मेरे घर पर एक दिन फोन किया। उसने कहा कि वो मुझे अपने साथ के बहुत ज़रूरतमंद विधवा को भेंट करने के जाना चाहता था। जब मैं उसका इंतज़ार कर रहा था मुझके पिक करने के लिए, मैं मुसीबत में हुआ। मुझे पता था कि बिशप के पास मजबूत और अच्छे सलाहकार थे। एक जाने माने जज थे, दूसरे का पास बड़ी कंपनी और बाद में महाअध्यक्षता बन सकते थे। बिशप खुद की इस दिन महाअध्यक्षता की सेवा कर सकते थे कि बिशप के बिना अनुभव के बदारी को उसकी मदद के लिए कर रहे थे। अब मुझे पता है कि वो मुझसे क्या कहेगा। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। विधवा का घर पर मैंने उस महिला से कहते हुए देखा कि उसे कर्ज घर के कोई मदद नहीं मिलेगा जब तक वो उस कर्ज के फॉर्म को बाहर नहीं देती थी जो उसे पहला दिया गया था। हाल जब वो अपने कर्ज में सुधार लाएगी वो दूसरों की मदद करेगी सकेगी। एक दूसरे स्थिति में मेरे बिशप ने मुझे अपने संघ के माता पिता के घर ले जाए, जो दोनों शराबी थे, जिन्होंने अपने दो धारी हुई छोटी लड़कियों को हमेशा मिलने दरवाजे पर भेजा। दो छोटी लड़कियों के कुछ बताने करने के बाद वो मेरे और मुड़ा और मुझसे कहा, हम उनके जीवन के घंटों को भी बदल नहीं सकते। एक शाम उसने मुझे एक घर के आदमी के पास ले गया और कई सालों से गिरजाघर नहीं आया था। बिशप ने बतलाया है कि वो उसे कितना प्रेम करता था और वोट के उसकी कितनी ज़रूरत है। उस आदमी और उसका बहुत आसार नहीं पड़ा, मगर उस समय और सभी समय और जब बिशप ने मुझे अपने संग गया, मुझे पर बहुत प्रभाव हुआ। कोई तरीका नहीं था जिसे मुझे पता लग सकता कि क्या बिशप ने प्रार्थना किया था। वो जाने के लिए किस पादरी को उस बैंड से आशीर्वाद मिले। उसने कई बार दूसरे पादरियों को अपने साथ ले गया होगा, मगर प्रभु को पता था कि मैं किसी दिन बिशप बनूंगा। उनको आमंत्रित करते जिनके विश्वास समाचार में आने के लिए कम था, जहाँ उनके विश्वास मजबूत हो सकते हैं। प्रभु का पता था कि दिन मुझे पुरोहितों की जिम्मेदारी को दिया जाएगा। तुम जीवन पुरुष नहीं जान सकते हो कि पुरोहितों की कार्य के सेवा प्रभु तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं, मगर सभी पुरोहितों को ज्यादा चुनौती है धार्मिक मदद करें। हम सबको यह जिम्मेदारी मिली है। यह जिम्मेदारी परिषद के सदस्य होने से मिलता है, यह परिवार के सदस्य होने से मिलता है। अगर तुम्हारे परिषद या परिवार के किसी की विश्वास को शैतान ने हमला किया है, तुम दया महसूस करोगे। उसी तरह की सेवा और दया के जैसे समर्थन के किया था। तुम्हारे पूरे समय के प्रचार सेवा में तुम बहुत धार्मिक जरूरतमंद हजारों लोगों के पास हो गए। कई लोग जब तक तुम उन्हें सिखलाओगे नहीं, जानेंगे नहीं कि उनके पास धार्मिक घाव है, दवा नहीं की गई, खुशी नहीं मिलेगी। तुम प्रभु के कार्य को करोगे उनको बचने के लिए, सिर्फ प्रभु उनके गवान को बाहर सकते हैं जब वे आनंद जीवन के लिए सिद्धांतों को स्वीकार करें। प्रसाद के सदस्य होने से, घरेलू शरलय होने से और प्रचारक होने से तुम लोगों की मदद नहीं कर सकते धार्मिक नुकसान को बनाने में जब तक ही तुम्हारे खुद की विश्वास मजबूत ना हो। प्रार्थना उस समय पर और कुछ सुसमाचारों को पढ़ने से तैयारी के लिए कम है। मदद जिसका तुम्हें जरूरत होगा डॉक्ट्रिन और कवनेंस के 84th भाग के सलाह से प्राप्त होगा कि हमें वो पहले से नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या कहना है, मगर अपने मन में हमेशा अपने जीवन के शब्दों को सोचना चाहिए और फिर हमें वो भाग मिलेगा उसी समय जब हमें ज़रूरत होगा। यह वादा हमें मिल सकता है अगर हम सिर्फ जीवन के शब्दों और उसे हमेशा करने की पर सोचे। सुसमाचार और सोचने से मैंने शब्दों को महसूस करना सीखा है। एक बार जब मैं किसी को मदद करने की कोशिश कर गया जिसका अपना यह अपने विश्वास को भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के दिव्य नियुक्ति के बारे में ऊपर नीचे होता देखता है, मुझे भी महसूस हुआ। यह सिर्फ मोर्मन के धर्मशास्त्र के शब्द नहीं है, यह सच्चाई की विश्वास का एहसास है जो मिलती है जब मैं कभी भी मोर्मन के धर्मशास्त्र के कुछ दिनों को पढ़ता हूँ। धर्मशास्त्र के बारे में शंका होगा, मैं जानता हूँ कि जोसेफ स्मिथ पुनः स्थापना को भविष्यवक्ता है। मैं जानता हूँ कि मोमन की धर्मशास्त्र परमेश्वर की वाणी है क्योंकि मैं उस पर सोचा है। मैं अनुभव से जानता हूँ कि तुम आत्मा से सच्चाई की विश्वास को पा सकते हो क्योंकि मुझे इस तरह प्राप्त हुआ है। तुम्हारे और मेरे पास ऐसा विश्वास होना चाहिए प्रभु को हमें ये यात्री जिसे हम प्रेम करते हैं, जो सच्चाई की विरोधियों से जख्मी हुआ है की तरह बनाने से पहले। यह परख और तैयारी है जो हमें करना चाहिए। यह इंसान की कैसियत है कि वो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता। यह एक कारण है कि उद्धारकर्ता क्यों इतना सब कुछ को किया था अपने प्रशित को बतलाने के लिए और अपने खुद के ऊपर स्वर्ग के पिता को सभी बच्चों के दुख और तकलीफों को लेने के ताकि वो जाने कि उसे उस कैसे मदद करें। स्वर्ग के पिता के मरणशील पुरोहिति के रखने वाले सभी दया के करने के कार्य को पूरी स्तर का आसानी से नहीं करते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे अधीर निंदा या निकाल की तरह नहीं देखता है। जब हम प्रभु के मदद से उसके पुरोहितों सेवकों की तरह तैयार होकर करते हैं, यह सुसमाचार है हमें मदद मार्गदर्शन के देने के लिए। वो में वह उपहार है जो हमें सफर के लिए जरूरी है, जहाँ कहीं भी प्रभु हमें भेजे, हमें उसकी जरूरत है। और प्रभु ने बताया है कि हम किस तरह पा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, अगर तुम्हारे पास उदारता नहीं है तब तुम कुछ भी नहीं है, क्योंकि उदारकर्ता कभी असफल नहीं होता। इसलिए उदारकर्ता की करते हो जो सबसे बड़ा कर है, क्योंकि वह बातें सफल होगी। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, अपने हृदय को संपूर्ण कर शक्ति के देवा द्वारा इस प्रेम में परिपूर्ण होने के लिए पिता से प्रार्थना करो, जिसे उसने लोगों के देन में दयाल है जो उसके पुत्र यीशु मसीह के सच्चे अनुगामी है। वो जैसे कि तुम्हें यह आशा प्राप्त होती और हम उस पर उसी प्रकार निर्मल किया जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को पुरोहितों की सेवा के पुरोहितों के लिए उस तरह तैयार करें कि कुछ भी कहा जाएगा और हम करें हमारे मनसिल सफर में यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाइयों, हम इस शाम को तुम्हारे उपस्थित से आभारी है। हरोनिक प्रवृत्ति गायक मंडली को धन्यवाद देते हैं इस प्रवृत्ति संगीत के लिए जो उन्होंने प्रदान किया है, और उन सभी को जिन्होंने सभा को करने में मदद प्रदान किया है। अब हमारे प्यारे भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस एस मंसन को आभारी है। प्रधान मंसन के भाषण के बाद गायक मंडली गॉड आवर फादर्स हूज ऑलमाइटी हैंड्स को गाएंगे। एल्डर वाल्टर एफ गंजालेस जो 70 के, उनके द्वारा अंतिम प्रार्थना की जाएगी।
Tonight, in the conference center,
सोल्ट लेक शहर के सम्मेलन केंद्र में और दूर और करीब के स्थान में परमेश्वर के पुरोहित रखने वाले इकट्ठा हैं। जैसे पीटा ने कहा है, मैं तुम एक सही पुरोहित हो, हाँ एक चुनी हुई पीढ़ी। मैं सम्मानित होने हूँ उपस्थित बड़ा कर शब्द के लिए। जब मैं बड़ा हो रहा था, हमारे परिवार हर गर्मी के मौसम में प्रोवो कैनियन जाता था, जो सोल्ट लेक शहर के लगभग 45 मील दर्शन और दक्षिण और थोड़ा पूर्व के दिशा में था, जहां हम केबिन में रहते कुछ हफ्तों तक। हम लड़के हमेशा उत्सुक थे मछली मारने के तैरने वाले तालाब में जाने के लिए, और हम घटी को तेज बहाने की कोशिश करते। उन दिनों में मेरे पिता की गाड़ी एक 1928 का ऑल्ड्समोबाइल था। अगर वो 35 मील प्रति घटी से चलता था, मेरी माँ कहती, धीमी करो धीमे करो। मैं कहता, एस्केलेटर दबाओ पिताजी, तेज चलो पिताजी। 35 मील प्रति घंटे चलाता प्रभु के नियंत्रण किया, जब किसी मोड़ पर हमें भीड़ का ढल रोक देता। हम देखते रहते अपने सामने से कई से भेड़ों को जाते हुए बिना कोई चेहरे के, कुछ खूटे ऊपर भौंकते रहते, दूर पीछे नहीं पेड़ के वालों घोटे पे देखते। उसने रोकने के रस्सी नहीं पर उसके चलने वाली रस्सी। वो कभी कभी आलसी की तरह बहते रहते, क्योंकि घोड़ा जानता था खेड़ कर जाना की और कुत्ते बाकी काम कर देते। इसकी तुलना उस दृश्य के करो जो मैंने मोनिक जर्मनी में देखा था कई वर्ष पहले। रविवार की सुबह था और हम एक प्रचारकों के सम्मेलन में जा रहे थे। जब मैंने मिशन आदेश के गाड़ी के खिड़की के बाहर देखा, मुझे एक चेहरावा देखा, हाथ में लाठी लिए हुए भेड़ों के ले जा रहा था। भेड़ उनके बीच गए जहां भी वो गए। अगर वो भाई या जाता और जाता, वे भाई और जाता। अगर वे दाई और जाता, वो उनके दिशा। मैं तुलना करता हूँ चेहराओं का। यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपने भीड़ को जानता हूँ। वो हमारे लिए संपूर्ण उद्धारकर्ता देता है और शानदार चरवा करता है। भाइयों, परमेश्वर के पुनस्थापित होने के नेता हमारा जिम्मेदारी है चरावे का। प्रभु के बुद्धिमानी ने दिशा निर्देश दिया है जिसे हम गिरजाघर के परिवारों के लिए चेहरा बना, जहां हम उन्हें सेवा, शिक्षा और गवाही देते हैं। इसके घरेलू शिक्षा कहते हैं, होम टीचिंग। और इसी विषय पर मैं आपसे आज बात करूंगा। गिरजाघर में हर एक बिशप, पुरोहित, रखवाले के नियुक्ति कैसे दी जाती है देखता है होम टीचिंग के रूप में, ताकि वो हर महीने संदेश के घर भेंट कर सके। वे जोड़ में जाते हैं जहां मुमकिन हो। एक जवान पुरुष जो पृष्ठ है या टीचर एरोनिक प्रिस्टूड में एक बुजुर्ग मलकेजिक प्रिस्टूड रखने वाले के साथ जाता है। जब वे अपने निर्धारित घरों में जाते हैं, एरोनिक पुरोहित रखवाले सिखलाता है। ऐसा करने से जवान पुरुष को मिशन तथा जीवन भर के पुरोहित सेवा करने का तैयारी होती है। होम टीचिंग का कार्यक्रम वर्तमान का प्रतिकारण है, जो पुरोहित प्राप्त करने वालों को सिखलाना, समझाना, बदलाना, बपतिस्मा देना और हर एक सदस्य के घर को जाना और उनके अकेले में और सामने प्रार्थना बोलने और परिवार जिम्मेदारी को पूरा करना, बतलाना, हमारे गिरजाघर का घायल करना और उनके साथ रहना और मजबूत करना और देखना कि गिरजाघर में कोई पाप ना हो, ना एक दूसरे के बीच बुरे एहसास, ना तो झूठ बोलना, बुरा कहना, ना बुराई करना। प्रधान डेविड ओ मके ने कहा, होम टीचिंग हमारा सबसे महत्वपूर्ण और लगभग ध्यान मौका है पोषण और प्रेरित करने का, पिता के बच्चों के साथ सलाह और मशवरा करने का। ये एक दिव्य सेवा है, एक दिव्य मुक्त नियुक्ति। हमारा जिम्मेदारी है कि होम टीचिंग होने के नाते आत्मा को हर एक घर और हृदय में ले जाएं, काम से प्यार करना और अपने पूरी कोशिश करना, ताकि एक सर्फ मेहनती परमेश्वर का बच्चा के को शांति, खुशी और शांतिशाली मिले। मोमन धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि एल्मा ने अपने सभी प्रीस्ट और टीचरों को अभिषेक किया और कोई भी अभिषेक नहीं हुआ जब तक वो अच्छा आदमी ना था। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को देखभाल की और उनका पोषण और चीजों में किया जो धार्मिक थे। हमारे होम टीचिंग शिक्षा के जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। हम बुद्धिमान होंगे जब हम परिवार के हर एक सदस्य के चुनौती को सीखेंगे और समझेंगे कि हम अच्छी तरह शिक्षों दे और सहायता प्रदान करेंगे। एक होम टीचर भेंट ज्यादा सफल होगा जब पहले से इतला कर दे जाए इस विषय को इच्छाई तरह बतलाना के लिए। मैं कुछ वर्षों पहले अपने अनुभव बतलाता हूँ। उस समय मिशनरी एग्जीक्यूटिव समिटी में स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल, कॉर्डन बी हिंकली और थॉमस ऑस्मॉनसन थे। एक स्थान भाई और बहन हिंकली ने समिति के स्थान संदेशों और उनके पतियों के लिए रात को भोजन बनाया और उनको घर पर हमने अपने भोजन खाना संपत किया था और दरवाजे पर खटखटाया हुआ प्रधान हेंकली ने दरवाजा खोला और अपने एक घरेलू शिक्षा होम टीचर वहां खड़ा था। घरेलू शिक्षा ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने आने से पहले इतना इतला नहीं किया और मेरा साथी मेरे साथ नहीं है, मगर मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए आज रात को। मैं नहीं जानता था तुम्हें आरा घर पर लोग होंगे। प्रधान हेंगली ने सम्मान के साथ घरेलू सेशन को अंदर बुलाया कर निमंत्रण दिया और तीन देवताओं और उनके पत्नियों के कमजोरी सिखलाया। थोड़ा डर के साथ घरेलू शिक्षा ने कड़ी मेहनत की। प्रधान हेंगली ने उसे धन्यवाद दिया जिसके बाद वो जल्द से चला गया। मैं एक और उदाहरण देता हूँ गलत तरीका से घरेलू शिक्षा करने का। प्रधान जी रमली जो प्रधान अध्यक्ष के सलाहकार थे, कुछ वर्ष पहले अपने एक घरेलू शिक्षा के बारे में बतलाया रहा था कि जो एक रोमनी घर पहुंचा घंटी रात को, उसने अपना टोपी अपने हाथ में रखा और घबरा कर कारण सीधा नहीं बांध पाया और अपना संदेश दे दिया। खड़े खड़े उसने कहा, अच्छा मैं बताऊंगा भाई रोमनी, बाहर ठंड है और मैंने अपने गाड़ी को इंजन चलती छोड़ी ताकि वो बंद ना हो सके। मैं सिर्फ आया था ताकि मैं अपने बिशप को बता सकूं कि मेरे भेंट हो गया है। प्रधान एजरा टेफ बेंसन ने प्रधान रोमनी के अनुभव को पुरोहित रखवालों के एक स्वभाव में बतलाया है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं। भाइयों, बहुत बेहतर, मैं सहमत हूँ। घरेलू शिक्षण है महीने बिना साहस की नहीं किया जाता। हमारी जिम्मेदारी है सिखलाना, प्रेरित करना, उकसाने के लिए। और जहाँ कम सक्रिय लोगों के बात है, उसके सक्रिय बनाए और आनंद तक पहुँचाए परिवार के पुत्र और पुत्री के रूप में। हमारे कोशिशों में मदद करने के लिए मैं एक बुद्धिमान सलाह बताऊंगा जो घरेलू शिक्षकों के लिए है। अब्राहम लिंकन ने कहा, अगर तुम एक मनुष्य को अपने लक्ष्य में शामिल करोगे, पहले उसे बतलाओ कि तुम उसके अच्छाई दोष हो। प्रधान एसरा टेफ बेंसन ने निवेदन किया, सबसे बढ़कर सच्चा दोस्त बनो सिखलाने वालों के। एक दोस्त जिम्मेदारी निभाओ और अच्छा भेंट करता है हर महीने। एक दोस्त सहायता करने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है पहुंचने जाने में नहीं। एक दोस्त परवाह करता है, एक दोस्त प्यार जतलाता है, एक दोस्त सुनता है और एक दोस्त मदद करता है। घरेलू शिक्षण प्रार्थनाओं के जवाब देता है और मौका देता है कि हम लोगों के जीवन में आए बदलाव को देखें। इसका उदाहरण है डिक हैमर जो अधिक संकट के समय यूटा आए और सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स के साथ। जब वो यहाँ थे, वो एक अंतिम दिन संतों जहाँ महिला से मिली और उसे शादी किया। उसने सेंट जॉर्ज यूटा में डिक्स कैफे खोला जो एक प्रदेश मिलकर जगह था। वेलेट मेलने मेरा एक दोस्त हैमर परिवार का घरेलू शिक्षक बना। मैं खुद डिक हैमर को जानता था क्योंकि मैंने उसके कैफे को भोजन की मेनू चापी थी। जब भी मैं सेंट जूपा जाता था, मैं दोस्त भाई मिलने से पूछता था, हमारा दोस्त डिक हैमर कैसा प्रगति कर रहा है। उसका जवाब रहता है, वो प्रगति कर रहा है पर अहिस्ता। जब वुल्फर्ड मिलने और उसका साथी हैमर परिवार के घर जाता हर महीने, वे हमेशा एक सुसमाचार संदेश को बतलाता और उनके साथ अपनी गवाही देता। वर्षों बीत गए और फिर एक दिन विलेट ने मुझे फोन किया अच्छी समाचार के साथ। भाई मॉनसन, उसने कहा, डिक हैमर बदल गया है और अब बपतिस्मा ले वाला है। वो 90 वर्ष का है और हम अपने पूरे बुर्ज जीवन में दोस्त रहे हैं। उसका निर्णय मुझे प्रशासन करता है। मैं कई वर्षों से उसका घरेलू शिक्षण रहा हूँ। बहुत एहसास था विलट की आवाज़ में जब वे मुझे ये संदेश दिया भाई हेमर ने बपतिस्मा लिया और एक वर्ष बाद सुंदर सेंट जॉन मंदिर में गया और वहां अपना एंडाउमेंट और बंधने की आशीर्वाद लिया मैंने विलेट से पूछा इतना लंबा समय तक उनका घरेलू शिक्षक रहते तुमने नर्वस निराशा नहीं हुआ वो जवाब दिया नहीं वो हर कोशिश को बराबर था जब मैं हमर परिवार से संदेश के कोशिश पाए बयान करता हूँ मेरा हृदय आभार से भर जाता है सुसमाचार से मिले गए आशीर्वाद के लिए उसके किसी तरह सहायता करने के सौभाग्य से मैं एक खुश आदमी हूँ भाइयों ये हमारा सौभाग्य रहा है वर्षों से कई लोगों को भेंट करना और सिखलाना वो जो काम सक्रिय है और थत्ते जो पूरी तरह से सक्रिय है अगर हम अपने नियुक्ति में ध्यान दें हमें कई मौका मिलेगा जीवन की आशीर्वाद देने के लिए गिरजाघर गतिविधियों और हुए लोगों के भेंट करना उन्हें पूरी गतिविधियों में वापस ला सकते हैं ऐसा सोच रखते हुए मैं मन में हम उन तक पहुंचे जिनके हम जिम्मेदार हैं हम उनके प्रभु के सुसमाचार तक लाएं ताकि वो प्रभु के वाणी से लाभ उधार और उनकी आत्मा के साथ का आनंद ले और विदेशी और मुसाफिर नहीं परंतु पवित्र लोगों में संगी स्वदेश और परमेश्वर के घराने के हो जाए अगर तुम में से कोई लापरवाह हो गया है घरेलू शिक्षा भेंट को लेकर मैं आपस कहना चाहता हूँ कि वर्तमान से बेहतर समय नहीं है अपने इन जिम्मेदारी को पूरा करने का अभी निर्णय कर लो जरूरी कोशिश करने की ताकि तुम उत तक पहुंचो सको जिनके लिए तुम जिम्मेदार हो कभी कभी कुछ ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत भी पड़ेगी तुम्हारे घरेलू शिक्षा के सदी कोई समय निकाह कर अपने साथ ले जाएगा के लिए मगर अगर तुम लगे रहोगे तुम सफलता पाओगे भाइयों हमारे घरेलू शिक्षण के कोशिश जारी रखना कम तक तब तक ना खत्म होगा जब तक प्रभु और स्वामी ना कहेगा उतना बस है वहाँ जीवन हर सुधारण के लिए वहाँ हृदय है एहसास दिलाने के लिए वो आत्मा है बचने के लिए हमारा पवित्र स्वभाव है उनके सुधारण एहसास दिलाने और बचने का सुनने हमारे भरोसे मन दिए गए हैं हमें दिल से और प्रसन्नता से ये काम करना है संपत्ति में मैं एक खास उदाहरण का इस्तेमाल सही कर लूंगा शिक्षण होम टीचिंग के बारे में बतला कर लिए एक शिक्षक है जो सबसे महान है उसने जीवन और मृत्यु जिम्मेदारी और किस्मत के बारे में बतलाया वो सेवा करने करवाने नहीं पर सेवा करने आया कुछ पाने नहीं पर देना अपने जीवन बचाने नहीं पर औरों के लिए उसने बलिदान करने उसने लालच से बड़ा एक प्यार दिखलाया एक करीबी जो खजाने से भी धनवान हो इस शिक्षक के बारे में कहा जाता था कि वो शास्त्रियों के समान नहीं पर अधिकारियों के समान उपदेश देता है उसने उसके कानून पात्र पर नहीं पर मनुष्य के हृदय में होते थे मैं महान शिक्षक के बारे में करता हूँ वो हर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता धर्मशास्त्र उन्हें बारे में कहता है वो भलाई करता था क्योंकि वो हमारे नमुकारण वाले निर्देशक और उद्धारकर्ता है हम उनके दिव्य सहायता के लायक है घरेलू शिक्षण में जीवन को आशीर्वाद मिलेगा, हृदय सनुभावित पाएंगे, आत्माओं बचाई जाएंगे, हम सच्चाई चढ़ावा बनेंगे कि आशा ही हो। मैं यीशु मसीह के नाम से निवेदन करता हूँ, यीशु मसीह, आमेन।
Our beloved Father in heaven,
हमारे प्यारे स्वर्ग पिता, हम अपने सर को झुकाते हैं आपके सामने और धन्यवाद देते हैं आपके, और हम धन्यवाद देते हैं जो जो हमने आज समाचार सुना है और जो आज्ञा आपने उन लोगों के द्वारा हमको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं जो संगीत हम लोगों ने सुना आज। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए और उसके शब्दों के लिए, खास करके होम टीचिंग के विषय में धन्यवाद देते हैं प्रेजेंट मॉनसून के लिए, और प्रार्थना करते हैं उसके लिए ताकि उसके ऊपर आपकी आशीष हो। हम आभारी हैं जो टेक्नोलॉजी हमको दिया गया ताकि हम एक दूसरे के पास मिल सके और बात कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं खास करके आपके पुत्र, हमारा जो चेहरावा है, हमारा उद्धारकर्ता है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीष हमारे साथ हो ताकि हम जो ये आज सीखे हैं और जो आत्मा के द्वारा से हमें मिला है हम उसके ऊपर कार्य करें. आपके सब कार्य हो यीशु मसीह के नाम से. आमीन.